कि ब्रह्मा जी देवता गणों को इस प्रसंग का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे वैकुंठ लोक में जितने भी अलग अलग प्रकार के भवन हैं, वो सभी चिंतामणि के बने हुए हैं। वहां पे जितने भी निवासी रहते हैं उनके सच्चिद आनंद शरीर होते हैं। वैकुंठ लोक वो स्थान है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का केवल एकमात्र मूल केंद्र होता है, वह है भगवान श्री विष्णु की सुंदर चरण कमलों की सेवा। वहां के निवासी अलग अलग हवाई जहाजों में घूमते हैं जो कि चिंतामणि के बने होते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नियां भी होती हैं, लेकिन उनके बीच वैसा संबंध नहीं होता जैसे भौतिक जगत में हम अनुभव करते हैं, क्योंकि सभी के शरीर सच्चिदानंद विग्रह हैं। और वहां पर लक्ष्मी जी और उनकी सेविकाएं अनेकानेक हैं, और ये सभी लक्ष्मी देवियां सर से लेकर पांव तक बड़े सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। वो जब वैकुंठ लोकों के बहुत ही सुंदर स्फटिक मणि के फर्शों पर चलती हैं, तो उनके शरीर के ऊपर जड़ी हुई आभूषणें बहुत सुंदर ध्वनि करती हैं, और ये सारी लक्ष्मियां उनके हाथ पैर सोने चांदी से जड़े हुए हैं, अपने हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगाती हैं। वैकुंठ लोक के फर्श की वो सफाई में लगी रहती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वैकुंठ लोक के फर्श पर कोई गंदगी नहीं होती, वैकुंठ लोक के फर्श पर तो कोई धूल मिट्टी नहीं होती। तो ये लक्ष्मी देवियां क्या कर रही हैं? क्या वो बेरोजगार हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं कि हाथ में झाड़ू लेके शुरू हो गई? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए प्रयास करता है। लक्ष्मी पूजा लोग पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया करते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक एक ऐसा स्थान है जहां पर अनेकानेक लक्ष्मियां आपस में होड़ लगा रही हैं कि कौन श्री विष्णु का ध्यान पहले आकर्षित करे। किस लिए? भोग के लिए नहीं, उनके चरण कमलों की सेवा के लिए। अर्थात भगवान श्री विष्णु के चरण कमल इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मियों के बीच होड़ या कंपटीशन लगी रहती है कि कौन विष्णु के चरण कमलों की सेवा पहले करे। और वैकुंठ लोक के विषय में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, पारावतान्यभृत सारस चक्रवाक दत्यूह शुक्रतिह बर्नाब कोलाहलं विरमते चिरमात्रमुच्च भृंगादिपे हरिकथां यगीयमाने। वैकुंठ लोक के अलग अलग पेड़ों पर सुंदर सुंदर पक्षियों का वर्णन है जिनके कूजन की आवाज चारों दिशाओं में फैल रही है। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक अर्थात चिड़िया, कबूतर, मोर, मैना इत्यादि अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं जो बहुत ही सुंदर ध्वनि गुंजन कर रहे हैं। लेकिन उन सभी पक्षियों के कूजने की आवाज के बीच में अचानक एक दूसरी ध्वनि आती है, भृंगादि पे हरिकथाम इव गीयमाने। अचानक भृंग अर्थात मधुमक्खी, वैकुंठ लोक की मधुमक्खी कृष्ण कथा विष्णु के गुणगान करने लगती हैं अपने सुंदर ध्वनि में। कोलाहलम विरमते चिरमात्र मुच्चय। इस ध्वनि को सुनकर जितने भी अलग अलग पक्षी अपनी ध्वनि निकाल रहे थे एकाएक चुप हो जाते हैं। भले ही उनकी ध्वनि इतनी सुंदर और मधुर हो लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ मधुमक्खी जो है भगवान श्री विष्णु की सुंदर गाथाओं का वर्णन कर रही है, इसलिए शांत हो जाएं, और वो तुरंत शांत हो जाती हैं। और आगे बताते हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, वैकुंठ लोक वो स्थान है जहां विष्णु की कथा सर्वोच्च है। कोयल की गूंज कितनी सुंदर और मधुर होती है लेकिन कोयल को वैकुंठ लोक में ये नहीं लगता कि मैं कितना सुंदर गीत गा रही हूँ। जैसे ही मधुमक्खी की कृष्ण कथा सुनती है वो चुप हो जाती है और सब मिलकर कहती है चलो अब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, अपनी ध्वनि को हम शांत कर दें। अर्थात वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ मात्सर्य द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद उसी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं, इसके विपरीत भौतिक जगत में एक गधा भी अपनी ध्वनि पर बड़ा गर्व करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ध्वनि अपने विचार व्यक्त करना चाहता है और भगवान से संबंधित विचारों को नहीं सुनना पड़ता सुनना चाहता। जैसे एक बार मुझे हमारे महाप्रभु जी ने बताया था कि इंदौर में इनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉयरों का और वहां करीब 400-500 लॉयर आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन 500 के 500 केवल बोलने के लिए आए थे, सुनने के लिए कोई नहीं आया था। भौतिक जगत एक ऐसा स्थान है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहता है लेकिन वैकुंठ लोक वो स्थान है जहां प्रत्येक प्राणी कृष्ण कथा को अधिक महत्व देता है। तो इसीलिए इतने सुंदर सुंदर पक्षी और उनकी मीठी गूंज सभी शांत हो गए। कोलाहलम विरमते चिरमात्र मुच्चे, उनका सब कोलाहल जो चल रहा था एकाएक शांत पड़ गया। भृंगादिपे हरि कथाम इव गीयमाने, कृष्ण की कथा को सुनकर सभी शांत पड़ गए और वहां पर अलग अलग प्रकार के फूल और फल और पेड़ हैं। मंदार कुंड कुरबोत्पल पचाद पर्ण पुन्नाग नाग बकुलामुज चंपकर्ण, गंधेर चिते तुलसिका भरणेन तस्या तस्मिन स्तपो सुमनसो बहुमानयंती। अलग अलग फलों और पेड़ों और फूलों का वर्णन आता है लेकिन इन सभी फूलों में इतनी सुंदर गंध निकलती है लेकिन इतने सुंदर सुंदर फूल भी तुलसी महारानी के सामने आते हैं तो झुक जाते हैं। क्यों? गंधेर चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन स्तपो सुमनसो बहुमानयन्ति, क्योंकि वो इस बात को अधिक महत्व देते हैं कि तुलसी महारानी ने कितनी तपस्या की है और इस तपस्या के फल स्वरूप तुलसी महारानी ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों में नित्य स्थान प्राप्त किया है। तो भले ही हम सभी के अंदर बहुत ही सुंदर गंध हो, ये गंध बहुत ही आकर्षक हो, चंपक चंपक नाम का फूल, गुलाब का फूल और पुन्नाग नाग बकुलाम्बज अलग अलग फूल जिनके गंध प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने में पूर्ण रूप से सक्षम है लेकिन जब तुलसी महारानी के सामने आते हैं तो ये सारे फूल अपने आप अपने हाथ जोड़कर गंधेर चिते तुलसिका भरणे न तस्या, तुलसी महारानी के दास बनने के योग्य अपने आप को समझते हैं। तो ये है वैकुंठ लोक। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में द्वेष के लिए तनिक मात्र भी स्थान नहीं, लेकिन भौतिक जगत एक ऐसा स्थान है जहाँ पग पग में हमें द्वेष का सामना करना पड़ता है। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो केकड़ों को एक्सपोर्ट किया करती थी। केकड़े होते हैं क्रैब्स। तो एक बार एक दूसरे कंपनी के प्रतिनिधि देखने आए कि ये एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, और उन्होंने यहीं डॉक्स पर जाके देखा कि बड़े बड़े कंटेनर हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं जो पूरी तरह खुले हुए हैं और अंदर हजारों हजारों केकड़े पड़े हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अरे आप यहाँ भारत से इंग्लैंड इन केकड़ों को भेज रहे हैं, इतनी संख्या में हैं, और आप इस बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन भी नहीं रखते, इतने सारे केकड़े हैं, महंगे हैं, कहीं भाग गए, उड़ गए, कुछ हो गया तो क्या होगा? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, एक केकड़ा जब बर्तन के बाहर निकलने का प्रयास करता है बाकी सब पकड़कर उसको नीचे खींच लेते हैं, यदि दूसरा बाहर निकलने का प्रयास करे तो तीसरा उसे पकड़ लेगा। इस तरह हम सुरक्षित हैं और ढक्कन के खर्चे से बच जाते हैं। तो भौतिक जगत में ये हाल है, प्रत्येक व्यक्ति द्वेषी है और द्वेष के वशीभूत वो दूसरों को नीचे खींचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जगत वो स्थान है जहाँ जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं वो सभी दूसरों को ऊपर उठाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने इस तरह वैकुंठ लोकों का वर्णन किया और बताया कि ऐसे वैकुंठ लोक में चतुष्कुमार पहुंचे, और चतुष्कुमार के पहुंचते ही जय और विजय जो वहां के द्वारपालक थे उन्होंने देखा कि चार छोटे छोटे नंगे बच्चे आ रहे हैं, विष्णु के इस लोक में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही जय और विजय ने उन दोनों को देखा बहुत क्रोधित हो गए और चतुष्कुमारों को संबोधित करके कहने लगे कि ये कैसे संभव है कि आप जैसे चार बच्चे हमारे स्वामी के लोक में घुस जाएं? क्या आपको पता नहीं इस वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए सबसे उत्तम प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है? क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं? हम कदापि इस बात को सहन नहीं कर सकते कि हमारे स्वामी के यहाँ आप जैसे लोग अंदर घुसें और उनको परेशान करें। ऐसा कह के चतुष्कुमारों को उन दोनों ने रोक दिया। चतुष्कुमारों ने जय और विजय को देखा और समझ गए कि जय और विजय ने पहचाना नहीं कि हम कौन हैं, और चतुष्कुमार जय और विजय को देखकर बहुत क्रोध के साथ कहने लगे, ये वैकुंठ है, वैकुंठ ऐसा स्थान है जहां पर किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं हो सकता, ऐसे द्वंद्व से रहित स्थान में ये दो लोग कहां से आ गए जो हमें रोकने का प्रयास करते हैं? अरे तुम दोनों द्वारपालक इतने मूर्ख हो, आप जानते हो कि द्वारपाल की आवश्यकता कब पड़ती है? द्वारपाल की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई बाहर का अयोग्य व्यक्ति घर के अंदर घुस पाने की संभावना हो। लेकिन ये तो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक जहाँ विष्णु विराजमान है, और जब तक हृदय के प्रत्येक कलमश दूर नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति वैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। ये जानते हुए भी आप दोनों इतने उद्दंड हैं कि अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर हम चारों मासूम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हो। मूर्ख, हम आपको उचित दंड देंगे। ऐसा कह के उन चारों ऋषियों ने जय और विजय को बड़े क्रोध के साथ संबोधित किया। जय और विजय ने जब इस बात को सुनी तो घबरा गए। वो समझ गए कि अब ये चार ब्राह्मण हमें श्राप दे सकते हैं और ब्रह्म श्राप से कौन नहीं डरता। ब्राह्मण के श्राप से तो सभी डरते हैं, जय और विजय वैकुंठ में रहकर भी घबरा गए और वो तुरंत उनसे क्षमा याचना करने लगे। वो कहने लगे कि हमें क्षमा करें, यदि आप हमें श्राप देते भी हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे स्थान पर भेजिए जहां भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के चरण कमलों की विस्मृति न हो। हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, बस ये हम पर कृपा करें कि जहां भी जाएं कहीं न कहीं कैसे न कैसे भगवान श्री विष्णु की सेवा प्राप्त हो। तब उस समय जब वैकुंठ के द्वार पर ऐसा मतभेद हो रहा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जो अंदर लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान थे और जो कि सर्वज्ञ हैं और वो जानते हैं कि कहां पर क्या घटना घट रही है, तुरंत वैकुंठ के द्वार की ओर चलने लगे। भगवान श्री विष्णु के चारों ओर उनके अलग अलग पार्षद थे, जैसे नंद, सुनंद, लक्ष्मी देवी, गरुड़देव इत्यादि। भगवान श्री विष्णु वैकुंठ के द्वार की ओर आ रहे थे लेकिन गरुड़ जी पर सवार नहीं हुए। गरुड़ जी विष्णु के बगल में चल रहे थे और भगवान श्री विष्णु अपने चरण कमलों पर चलते हुए आ रहे थे। ऐसा क्यों? आचार्यगण बताते हैं कि भगवान श्री विष्णु चतुष कुमारों पर अपनी कृपा बरसाना चाहते थे और उन्हें अपने चरण कमलों का भरपूर दर्शन देना चाहते थे, इसीलिए वो पैदल आए और उनका दायां हाथ गरुड़ जी के गले पर ऐसा रखा था। उनके हाथ में सफेद रंग की सुंदर कमल थी और इस तरह कमल को अपने हाथ में घुमा रहे थे बड़े आनंद के साथ, क्योंकि भगवान श्री विष्णु तो स्वराट हैं, जो भी करते हैं आनंद के साथ करते हैं, उन्हें किसी बात की कोई जल्दी नहीं होती, उनको कभी किसी अपॉइंटमेंट वगैरह की चिंता नहीं होती, आराम से आ रहे थे अपनी स्वेच्छा से। और वो वहां पर पहुंचे और जैसे ही चतुष कुमारों के सामने भगवान श्री विष्णु का सुंदर रूप आया, चतुष कुमारों ने भगवान श्री विष्णु के सुंदर चरण कमलों से लेकर उनके सुंदर मुख कमलों का भरपूर दर्शन लिया और अपने आंखों से वो भगवान श्री विष्णु के सौंदर्य को पीने का प्रयास कर रहे थे। लक्ष्मीकांतम कमलयनयनम लोगी हृदयानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवाशं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भाषितांगं पुण्योपेदं पुंतरीकायदाक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथं सशंगचक्रं सकरीटकुंटलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान श्री विष्णु के सौंदर्य का उन्होंने इस तरह दर्शन लिया तो उनकी पूरी आंखें संतुष्ट हो गईं। भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से जो तुलसी के पत्ते लगे हुए थे, हवा का एक झोंका चला और वो हवा का झोंका धीरे धीरे चतुष्कुमारों के नाक के अंदर से अंदर गया और सीधा उनके चित्त को छू गया। तस्यारविंद नयनस्य प्रमकंद तेषां किंजलक मिश्र तुलसी चकार तेषां संशोभम अक्षर दिशाम चित चतन्वो। जब भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की गंध चतुष कुमारों के हृदय तक पहुंची तो वो बुरी तरह उन्मत्त हो गए। ये समझ नहीं सके कि इतना अधिक नशा हमें क्यों चढ़ रहा है। अभी तक तो हमने ब्रह्मन साक्षात्कार का अनुभव किया था, लेकिन ये क्या है? ये अचानक हवा का झोंका चला और हमारा मन पूरी तरह उन्मत्त हो गया। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है वो समझ नहीं सके। विष्णु के चरण कमलों में जो तुलसी लगी रहती है वो इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मन साक्षात्कारी व्यक्ति को भी पूर्ण रूप से वो आकर्षित कर सकती है। इसलिए चतुष्कुमार पूरी तरह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो गए और श्री विष्णु उनकी ओर बड़े प्रेम से देख रहे थे और चतुष्कुमारों ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमने आपके निजी सेवकों पर इस तरह अपराध किया है, कृपा करके हमें क्षमा करें। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने कृपालु हैं, आपकी कृपा जिसे प्राप्त हो गई उसे 14 लोकों में किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की भला क्या आवश्यकता है? यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा हमें क्षमा करें, और यदि हमें दंड भी देना हो तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति में डालिए जहां हम अपनी जिह्वा को आपके गुणगान में, अपने कानों को आपकी सुंदर कथाओं के श्रवण में और अपने हाथों और शरीर को आपकी सेवा में लगा सकें। इस तरह चतुष्कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु कह उठे कि देखो, मेरे सेवकों ने आपको वैकुंठ लोक में घुसने से रोका है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री विष्णु चतुष्कुमारों से क्षमा याचना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में मेरे जितने भी भक्त मेरी सेवा में लगते हैं और उनके हृदय के कलमश दूर होते हैं, आपको पता है उसका कारण क्या है? कहा जाता है कि जो व्यक्ति विष्णु के चरण कमलों की सेवा करे वो हर प्रकार के कलमश से दूर हो जाता है। तो विष्णु कहते हैं, आपको पता है मेरे चरण कमलों में ये शक्ति कहां से आती है? मेरे चरण कमलों में शक्ति आती है जब मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं। मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं और भक्तों की सेवा करने से मेरे चरण कमलों में पापों का क्षय करने की शक्ति आती है। और आगे वो कहते हैं, छिंद्याम स्वबहुमापी, यदि आपकी सेवा में अनुकूल न हो तो मैं अपने हाथों को भी काट दूंगा। और आगे कहते हैं कि वैष्णव और ब्राह्मण भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, नाहम ततादमि यजमान हविर्विताने चोतद घृत प्लुतम अदन हुकभुन मुखेन यत ब्राह्मणस्य मुखतः चरतोनुघासम तुष्टस्य मयि अवहितैर्निज कर्म पाकै। भगवान श्री विष्णु बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, बहुत मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों में बड़े बड़े हवन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई लाख किलो घी व्यय किया जा रहा है। यदि कोई यज्ञ होता है तो उसमें घी का प्रयोग तो होना अनिवार्य है। इतने सारे ब्राह्मण घी का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी घी अग्नि में जा रही है, और उसका उद्देश्य क्या है? श्री विष्णु को संतुष्ट करना। सारे यज्ञ का उद्देश्य है विष्णु को संतुष्ट करना। ठीक है, उचित है, लेकिन यदि उस घी का प्रयोग स्वादिष्ट पकवान बनाने में प्रयोग किया जाए और ऐसे घी से ओतप्रोत स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मणों और वैष्णवों को भरपूर मात्रा में खिलाया जाए तो उससे मैं और संतुष्ट होता हूँ। बोले महाप्रसाद की जय। विष्णु कहते हैं इतना घी क्यों अग्नि में डालो, इससे अच्छा कढ़ाई में डालो और कुछ अच्छे पकवान बनाओ और उसे अर्पित करो और भगवान के भक्तों को खिलाओ। च्योतत घृत प्लुतम अदन हुत भुन मुखे न। घृत प्लुतम अर्थात घी में डूबा हुआ, कहीं भी छुओ तो बस घी टपके। तो ये विष्णु स्वयं अपने मुख कमलों से चतुष्कुमारों को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब सबसे पहले पाश्चात्य देशों में प्रचार करने गए तो वहां उनके सबसे सर्वप्रथम शिष्यों को क्या पता था कि यज्ञ किस चीज का नाम है। अचानक सबको प्रभुपाद जी ने कहा कि अब दीक्षा होगी, आ जाइए। सब बैठ गए दीक्षा के लिए, सबके हाथ में केला दिया, सब केला खोलकर खाने की तैयारी करने लगे। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, यज्ञ में केला अर्पित किया जाता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने उन सभी को सबसे पहले यज्ञ के माध्यम से नहीं प्रसाद के माध्यम से आकर्षित किया था और उनको एक ऊंचा स्वाद दिया था। इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहेन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। प्रभुपाद जी के जितने भी सर्वप्रथम शिष्य थे वो प्रभुपाद की बंगाली एक्सेंट ठीक प्रकार समझ नहीं पाते थे। प्रभुपाद लेक्चर में क्या कह रहे हैं ये समझते नहीं थे, बस इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि ये जो पकवान बनाते हैं बड़े स्वादिष्ट हैं और इसे हम खाएंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो ये उनको पूरा पूरा विश्वास था। हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र यज्ञ कलयुग के लिए बताया गया है। हरिनाम संकीर्तन और महाप्रसाद का वितरण, और कलयुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं। एक बार हरिकेश महाराज बताते हैं रशिया में एक यज्ञ करने गए थे दीक्षा समारोह में, और ये तब की बात है जब साम्यवाद का काफी प्रचलन था और तब आसानी से वहां केले नहीं मिला करते थे। वहां केले के पीछे लोग काफी पागल थे और कभी केला दिखने को नहीं मिलता, मार्केट में भी नहीं मिलता था। तो हरिकेश महाराज अपने साथ अपनी बैग में केले स्मगल करके लाए जिससे वहां पर यज्ञ किया जा सके और दीक्षा दिया जा सके। और जैसे ही उनके होने वाले शिष्य उपस्थित हुए सबको एक एक केला दिया और वो सभी बड़े आनंद में आ गए, कहा आज तो गुरु महाराज ने दीक्षा के पहले ही फीस्ट आरंभ कर दिया। लेकिन फिर हरिकेश महाराज ने उनको समझाया नहीं नहीं, ये आपको यज्ञ में डालना है। तो उनकी शरणागति का टेस्ट वहीं पे आरंभ हो गया और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने सब उसे अग्नि में डाला। तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसाद से बहुत आकर्षित होता है, और यहाँ विष्णु भगवान चतुष्कुमारों को कहते हैं कि मैं प्रत्येक वैष्णव भक्त के हृदय में बैठा हूँ, और जो भक्त प्रसाद खाता है मैं अंदर बैठकर उसका सेवन करता हूँ और उससे मैं संतुष्ट होता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आवश्यकता से अधिक खाएं विष्णु को संतुष्ट करने, लेकिन उतना ही खाएं जो पर्याप्त हो। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, विष्णु भगवान स्वयं अपने मुख कमलों से चतुष्कुमारों को बता रहे हैं। और उस समय चतुष्कुमार भगवान के इन सुंदर मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित हो गए। वो सोचने लगे कि ये विष्णु हमारी स्तुति कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं। जय विजय को हमने जो श्राप दिया उससे वो प्रसन्न है या हमसे क्रोधित है, और वो कुछ निष्कर्ष नहीं लगा पाए कि वास्तव में है क्या ये विष्णु भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और उन्होंने अपने हाथ जोड़े और भगवान से कहने लगे कि देखिए भगवान, आप जो हमारी इतनी स्तुति कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें दंड दिया जाए। बस हमारी यही इच्छा है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, और जय और विजय के साथ हमने जो व्यवहार किया हो यदि उससे आपको कोई खेद हो तो कृपा करके स्पष्ट हमें बता दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं ऐसी क्या बात है, भृत्यापराधे स्वामिनो दंड, वो मेरे भृत्य अर्थात मेरे सेवक हैं, और क्योंकि उन्होंने गलती की है इसीलिए उसका दंड उनको भोगना ही पड़ेगा। तो मेरे विचार से उनको ऐसा दंड दिया जाए कि 3 जन्मों तक वो पृथ्वी लोक में जन्म लें, 3 जन्मों तक वो भौतिक जगत में जाएं और वहां पर मुझसे द्वेष का ढोंग करें, और उसके पश्चात 3 जन्मों के बाद मेरे साथ युद्ध करके मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके वो वापस वैकुंठ लोकों में आ पाएंगे। इस तरह भगवान विष्णु ने चतुष्कुमारों को कहा, और चतुष्कुमार वहां पर संतुष्ट होकर तुरंत निकल गए। उसके पश्चात श्री विष्णु ने जय और विजय को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, ये जो कुछ भी हुआ मेरी स्वेच्छा से हुआ है, ये मत सोचो कि ब्रह्म श्राप का विरोध करने की मेरी शक्ति नहीं थी, मैं चाहे तो इनके श्राप को विफल कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि लक्ष्मी जी को भी संतुष्ट करना है। वो कैसे, लक्ष्मी जी ने एक बार जय विजय के साथ एक ऐसी लीला की कि वो बहुत ही क्रोधित हो गई थी। लक्ष्मी जी विष्णु से मिलने आई तो जय विजय वैकुंठ के द्वार पर खड़े थे और लक्ष्मी जी को रोकने लगे, तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, कहा मुझे अंदर जाने दो। जय विजय ने कहा, नहीं भगवान ने कहा है कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे लक्ष्मी जी कहे, मैं कोई थोड़ी हूं, मैं लक्ष्मी जी हूं, उनकी पार्षद हूं, मुझे अंदर जाने दो। जय विजय ने कहा, नहीं हमें आदेश मिला है आप अंदर नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी जी ने सीधे जाकर विष्णु जी से कहा कि देखिए, ये आपके दो सेवक जय और विजय बड़े उद्दंड होते जा रहे हैं, उनके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए, उन्हें सबक सिखाओ, उन्हें दंड देना चाहिए। तो विष्णु सोच रहे थे कि ठीक है इन्हें दंड दें। और विष्णु भगवान के हृदय में एक और इच्छा उत्पन्न हुई, वो ये कि किस तरह मैं भौतिक जगत में जाकर वीर रस का आनंद ले सकूं। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को लड़ाई झगड़ा करने की बहुत आदत होती है। जब तक 10 दिन 15 दिन में कोई झगड़ा न हो उन्हें संतुष्टि नहीं होती। तो ये वीर्य रस ये वास्तव में भगवान श्री विष्णु से आता है। भगवान श्री विष्णु के अंदर भी ये भावना उत्पन्न होती है कि वैकुंठ में सब मेरे पैर पड़ रहे हैं, सब मेरी आरती उतार रहे हैं, सब मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ युद्ध करने की इच्छा हो रही है। तो विष्णु वैकुंठ में भला युद्ध कैसे करे? तो कहते हैं कि चलो हम इसके लिए एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे हम भौतिक जगत में जा सकें। तो इसीलिए विष्णु ने सोचा कि मैं अपने दो पार्षद जय और विजय को भौतिक जगत में भेज दूं, जिससे उनके साथ लीलाओं के माध्यम से अपने वीर्य रस को पूरी करने की ये तीव्र इच्छा संतुष्ट कर सकूं। और इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऐसी सुंदर लीला रची जिससे कई लोगों की इच्छा पूरी हो गई। एक तो लक्ष्मी जी संतुष्ट हो गई और भगवान के हृदय की इच्छा संतुष्ट हो गई, और साथ साथ भगवान ने ऐसी लीला की रचना की कि चतुष्कुमारों को उनके चरण कमलों का दर्शन मिला और ब्रह्मवादी चतुष्कुमार भगवान के भक्त बन गए। तो इसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से कि एक लीला करो लेकिन उस लीला के माध्यम से अनेक लोगों की इच्छाओं को पूरी करो। तो उसके पश्चात जय और विजय बड़ी तीव्र गति के साथ इस भौतिक जगत की ओर आने लगे। और जब जय और विजय भौतिक जगत की ओर तीव्रता से नीचे आ ही रहे थे, तभी वहां पर महान ऋषि कश्यप की पत्नी दीति के हृदय में कामाग्नि बहुत बुरी तरह से प्रज्वलित हो रही थी। दीति अपने पति कश्यप से कह रही थी कि मैं अपनी काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूं, मेरे हृदय की इच्छाओं को पूरी करो। और कश्यप मुनि उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो मूर्ख मत बनो, जानो कि ये समय हमारे मिलन के लिए उचित नहीं। इस समय शिवजी अपने पार्षदों के साथ घूमते हैं। कहा जाता है संध्या का समय ऐसा है जब शिवजी अपने पार्षदों के साथ भ्रमण करते हैं। शिवजी के पार्षद कौन है? भूत प्रेत पिशाच गुहियक गणपति इत्यादि जितने हैं वो सभी शिवजी के साथ घूमते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कोई कार्य करें जैसे सोना मैथुन करना इत्यादि, तो शिवजी के पार्षद उसका पूरा पूरा लाभ लेते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि शिवजी तो ठहरे भूतनाथ, अर्थात भूतों के वो नाथ हैं, भूतों पर कृपा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो देखते हैं कि जो भूत योनि में हैं, जो भूत प्रेत के शरीर को धारण किए हैं, उनको कोई स्थूल शरीर कैसे दिया जाए। और ऐसी चिंता में मग्न होकर शिवजी भ्रमण करते रहते हैं और ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि कहां कोई इस तरह के कार्य दिखें। और ऐसे समय पर किसी व्यक्ति ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उस स्त्री के गर्भ में ऐसे भूत प्रेत के आत्मा को डाल दिया जाता है। इससे शिवजी उस भूत प्रेत पर विशेष अनुकंपा करते हैं, उसे स्थूल शरीर मिल जाता है। तो ये बात दीति को कश्यप मुनि समझाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो आपकी इच्छा तो ठीक है लेकिन जानो ये समय उचित नहीं है, ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। यदि इस समय हमने कोई ऐसा कार्य किया तो ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति होगी जो भविष्य में 14 लोकों में प्रत्येक बद्ध जीव को इतना कष्ट देंगे कि अंततः सब हमें दोष देंगे। कृपा करके अपने आप पर कुछ नियंत्रण रखो, अपने मन और इंद्रियों को वश में करो मेरी प्रिय पत्नी। तो उस समय दीति की काम वासना इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को रोक नहीं सकी। कश्यप मुनि के चादर को पकड़ के वो खींचने लगी और उनसे आग्रह करने लगी कि अभी मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हे अर्जुन, आप इस काम वासना से बच के रहो, क्योंकि ये बद्ध जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? आवृतम ज्ञानम एतेन, बद्ध जीव के ज्ञान को ये पूरी तरह ढक देता है। और ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति का ये सबसे बड़ा शत्रु है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा अनलेन च, और ये बहुत भयंकर ज्वाला की तरह दहकता है। तो कुछ लोग कहते हैं यदि ये अग्नि के समान है तो जैसे मोमबत्ती की अग्नि पर एक बाल्टी पेट्रोल डालो तो क्या होगा, मोमबत्ती की अग्नि बुझ जाएगी। तो उसी तरह हृदय में काम वासना है तो उस काम वासना के ऊपर इतनी अधिक इंद्र तृप्ति का ईंधन डालो कि अपने आप वो ज्वाला बुझ जाएगी। क्या हम इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं? सुनने में तो ये लॉजिक बड़ा ही आकर्षक लगता है, और इसके आधार पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि संभोग से समाधि प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में हमारे हृदय के अंदर जो काम वासनाएं हैं, क्या वो मोमबत्ती की तरह छोटी है? नहीं, ये बहुत बड़े दावानल की तरह दहक रही हैं, और जितना भी इसमें ईंधन डालो ये और अधिक तीव्र होता जाता है। इसलिए कश्यप मुनि दीति को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे, अनियंत्रित काम वासना प्रत्येक व्यक्ति के पतन का कारण बनेगा, भविष्य में हमारे दुख का कारण बनेगा, बंधन का कारण बनेगा, चिंता का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा है कि अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखो। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था भर्तृहरि। ये भर्तृहरि ऐसे राजा थे कि बहुत बड़े कवि भी थे। और एक बार भर्तृहरि राजा, उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया और उसके पश्चात अपनी सुंदर पत्नी के प्रति वो बहुत आकर्षित हो गए। और हुआ यूं कि राज्य के सारे कार्यों को छोड़कर केवल अपनी पत्नी के साथ वो पूरा समय बिताने लगे, और वो उनके सौंदर्य से इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने उनके सौंदर्य के विषय में 100 सुंदर श्लोक लिख डाले, और उसका शीर्षक था श्रृंगार शतक। और उनके सारे मंत्री बड़े परेशान थे कि राजा क्या बात है, आजकल महल में दिखते ही नहीं। तो एक दिन एक साधु महात्मा उस राजा के महल में आए और राजा को उन्होंने एक बहुत सुंदर अंगूठी दी और कहा कि इसे उस व्यक्ति को देना जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो। राजा ने तुरंत उस अंगूठी को अपनी पत्नी को सौंप दिया। काफी दिनों के पश्चात जब राजा महल में बैठे थे तो एक सुंदर स्त्री बाहर से आई और आकर राजा के हाथ में एक भेंट दी। राजा ने अपने हाथ में उस भेंट को देखा और चकरा गए कि यह तो वही अंगूठी थी जो मैंने अपनी पत्नी को दी थी, और वो सोचने लगे कि यह इसके पास कैसे पहुंची। और चिंतन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने इसके विषय में एक सुंदर श्लोक लिख डाला। वो कहने लगे, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा चान्यमिच्छति जनः सजनोऽन्यरक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। ऐसे ये श्लोक लिख दिया। इस श्लोक में ये सारी समस्या का समाधान था कि ये हुआ क्या। उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मैं अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित होकर उसे ऐसी भेंट दी क्योंकि मेरे हृदय में इतनी अधिक काम वासना थी, मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, वास्तव में वो मुझसे प्रेम नहीं करती थी, वो किसी और पुरुष से प्रेम करती थी। साचान्यम इच्छति जनः सजनोऽन्य रक्ता, इसलिए उसने वो अंगूठी ली और दूसरे व्यक्ति को भेंट में दे दी जिससे वो प्रेम करती थी, और उसे लगा कि वो उससे प्रेम करता है लेकिन वास्तव में वो पुरुष किसी और स्त्री से प्रेम करता था और उसने वो अंगूठी उसे दे दी। और जिसे